सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रदानम् सर्वधर्माणाम् जयनम् जयतु शासनम् जयनम् जयतु शासनम् मम समयसाराय साधुचरणाय स्वभावाय भावाय वन्दे तु सौरसिद्धे रोमचरमणोवयं गतिं पत्ते पृच्छामि समये पाहुः भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव की कृपा आज से 2000 वर्ष पहले अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों को संबोधन करने के पावन उद्देश्य से इस समय सात परमाणु की रचना हुई। इसकी 31 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें जिनेन्द्र परमात्मा की निश्चय स्तुति का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने कहा, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से आत्मा को जानता है वह जितेंद्रिय जिन है, ऐसा निश्चय निर्णय स्थित मुनिवर कहते हैं। इंद्रिय शब्द में से आचार्य देव ने तीन अर्थ निकाले थे, इंद्रियों को जीतना, इसमें से तीन अर्थ निकाले थे, एक द्रवेंद्री, दूसरा भावेंद्री और तीसरा इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ। द्रव्य इंद्रिय शरीर के अंग रूप जड़ इंद्रियां हैं, उनके सामने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को रखा, जड़ स्वभावी जड़ इंद्रियों से चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को विलय किया, ये रखा था। भाव इंद्रिय में खंड खंड रूप भाव जो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान का व्यापार होता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने वाला जो खंड खंड ज्ञान जो कि अपने अपने विषय को जानता है, इसकी चर्चा हुई थी कल, और वो ज्ञान को खंड खंड रूप से बताता है, उसके सामने अखंड ज्ञान स्वभाव को रखा था। इसके बाद इंद्रियों के विषय, अब इंद्रियों के विषय का बहुत विस्तार है, उसमें तो गुरुदेव श्री जब इंद्रियों के विषय की चर्चा करते हैं वो तो सीधे पांच इंद्रियों के विषयों को तो सब लोग उसे मानते ही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान और भगवान की वाणी ही, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से जानने आती है ना, उसको भी उन्होंने इंद्रिय शब्द में लिया है, तो वो भी इंद्रिय है। वहां तक बात को गुरुदेव श्री लेके जाते हैं, यानी वो संघ रूप है, इंद्रियों के विषय जो है ना वो क्या है, वो संघ रूप है, और अपना भगवान आत्मा वो असंग चैतन्य स्वभावी है, उसको किसी का संग नहीं। और अज्ञानी जीव क्या करता है, वो तो जो इंद्रियों के भाव इंद्रियों के माध्यम से जो विषय जानने में आते हैं, चाहे वो पाप के कारणभूत अप्रशस्त परद्रव्य हो और चाहे पुण्य के कारणभूत प्रशस्त पर द्रव्य हो, तो दो ही प्रकार के तो पदार्थ जानने में आएंगे, इंद्रियों के माध्यम से दो ही प्रकार के तो पदार्थ जानने में आएंगे, या तो अप्रशस्त राग के कारणभूत पर द्रव्य जानने में आएंगे, स्त्री पुत्र धन मकान रुपया पैसा ये सब, और या प्रशस्त राग के कारणभूत पर द्रव्य, चाहे देव सास गुरु हो, उनकी वाणी हो, या तो भगवान आत्मा जो कि वितरकता का कारण है, जिसका अवलंबन वितरकता का कारण है, जिसका आश्रय वितरकता का कारण है, वह कभी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो वो एक अपने यहां पर अमित गति आचार्य के द्वारा रचित योग शास्त्र प्राभृत नाम का एक शास्त्र है, और उसमें एक बहुत अच्छी बात हमने कही, शरीर और आत्मा की भिन्नता
कैसे सिद्ध करेंगे हम शरीर और आत्मा भिन्न है ये कैसे हम कहें। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, दोनों अलग अलग ज्ञान से उपलब्धिमान है। शरीर और आत्मा यदि एक ही होते तो जिस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से शरीर जानने में आता है उसी इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से आत्मा जानने में आना चाहिए। लेकिन इंद्रिय ज्ञान के शरीर को इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है लेकिन उस इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता। भिन्न भिन्न ज्ञानों से उपलब्धिमान होने से ऐसा करके उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें न्याय दिया है। यहाँ पर जो अपनी कल चर्चा चल रही थी तो देखो ये यहाँ से ये चल रहे थे अपनी ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले ग्राह्य ग्राहक आम इंद्रिय ग्राहक है ये ग्राह्य है जो संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अर्थात अनुभव अर्थात ज्ञान के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं। किसको दिखाई देते एक जैसे होते एक जैसे किसको दिखाई देते अज्ञान जिसको ग्राह्य ग्राहक के लक्षण का संबंध जिसको ज्ञान नहीं याद नहीं भाई ये तो इंद्रिय ज्ञान का विषय है और इंद्रिय ज्ञान इनको जानने वाला है। तो ये है इसमें मेरे साथ इन परद्रव्यों का कोई संबंध है या परद्रव्यों का कोई संबंध था या अनंत काल में किसी भी परद्रव्य का संबंध मेरे साथ होगा इस बात के लिए रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। पर द्रव्य का संबंध होने का भ्रम हुआ संबंध भी क्या मानता है पर द्रव्य रूप ही अपने को मानता है। संबंध माने तो संबंध में तो दो चीजें होती है। जब हमने कहा कि इसका इसके साथ संबंध है तो दो चीजें सिद्ध हो गई और दो चीजें सिद्ध होने पर दो भिन्न होकर के ही दो हो सकती है क्योंकि हम जब दो कह रहे हैं तो दोनों न्यारी न्यारी है तो दो है और दोनों यदि एक में हो जाए सर्वथा एक में ही हो क्योंकि दो कहां है वो आशा तो बोलता है संबंध की हमारा इसके साथ संबंध है शरीर के साथ संबंध है स्त्री पुत्र आदि के साथ संबंध है धन के साथ संबंध भाषा संबंध की बोलता है और अभिप्राय में एक संबंध। वो क्या कह रहे हैं ये जो ग्राही ग्राहक संबंध लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन माने अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते होते नहीं। अगर एक हो गए होते या एक ही होते तो फिर भिन्न करना असंभव होता। भिन्न है और एक दिखाई देते हैं इसका नाम अज्ञान इसका नाम मिथ्या दर्शन इसका नाम उल्टी मान्यता। भिन्न है और एक दिखाई देता है और भिन्न है और भिन्न की भिन्नता ख्याल में आ जा रही है और उनसे भिन्न अपना भगवान आत्मा अपनी दृष्टि ज्ञान अनुभूति में आ जा रही है इसका नाम संघर्ष। अब कहने का मतलब क्या अभी तो अपन लोग जो इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं उन इंद्रिय ज्ञान के विषयों में इंद्रिय ज्ञान के विषय जो पर पदार्थ बनते हैं इंद्रिय ज्ञान का विषय आत्मा तो बनता है जो पर पदार्थ बनते हैं उन पर पदार्थों को अपन एक मेघ अपने साथ में अनुभव करते हैं एक मेघ एक जैसे होते एक जैसे हुए दिखाई देते हैं ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए ग्रहण किए का मतलब यहाँ पे जानना तो वो जानने के अर्थ में भी ग्रहण शब्द आता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के अर्थ में भी ग्रहण शब्द आता है मैंने अमुक को ग्रहण किया ग्रहण करने के अर्थ में तो क्या जानने के अर्थ में भाव इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए हुए अर्थात जाने हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द और जिसमें ये पाए जावे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जावे और जो शब्द रूप परिणाम जो अपने को जानने में आता है वो सब क्या है, वो सर्वथा पुत्र जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। देखो चार तो है गुण उद्गल के अंदर, चार तो विशेष गुण, ऐसे तो अनंत गुण है लेकिन मुख्य चार विशेष गुण है। और आश्चर्य की बात यह है गुण इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते। इंद्रिय ज्ञान का विषय कौन बनता है? अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप पर्याय में जो इन गुणों की अभिव्यक्ति होती है, स्पर्श की, रस की, वर्ण की और गंध की, वो खाली भाव इंद्रिय का विषय बनता है। वो भी सबका नहीं बताया था ये कोई स्पर्श रस गंध वर्ण जो उस पुद्गल परमाणु के त्रिकाली गुण है, त्रिकाली गुण विषय नहीं बनते इंद्रिय ज्ञान के। लेकिन उनका जो व्यक्त परिणाम स्कंद में आता है वो भी परमाणु का व्यक्त परिणाम नहीं, परमाणु में व्यक्त परिणाम नहीं, स्कंद में। और वो स्कंद में भी जो दृष्टि गोचर हो अपने को ऐसे स्कंद में, क्योंकि विश्व में तो हो स्कंद जो इंद्रिय ज्ञान के भी दृष्टि गोचर नहीं होते, इससे वो से स्कंद वो बाकी जो जो भी आते हैं वो सब है स्पर्श आदि पदार्थों को। मैंने सीधा सीधा ये अर्थ हुआ उद्गल से, यानी कहने का अर्थ क्या है जो सबसे बड़ा अनर्थ हम लोगों के साथ हो रहा है, हम लोग अपनी आत्मा का जो सबसे बड़ा अनर्थ कर रहे हैं वो इन उद्गल पिंडों को अपना मान करके अपने अनर्थ कर अपने लिए अनर्थ के द्वार खोल रहे। पंडित अपने दीप सिंह जी साहब काशी वाले जहां नित्यात्व की परिभाषाएं दी, अनेक प्रकार से अलग अलग प्रकार से उन्होंने भाव दीपिका के अंदर नित्यात्व की परिभाषाएं लिखी है, उसमें एक बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा दृष्टि गोचर उद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि। ये शब्द का प्रयोग है, जो दृष्टि गोचर उद्गल स्कंद है, उद्गल स्कंद माने अनंत उद्गल परमाणुओं का जत्था जो वर्तमान में शरीर के रूप में अथवा अत्यंत भिन्न बाह्य पदार्थों के रूप में हमारे साथ में संयोग रूप में आए, मकान के रूप में, धन के रूप में, है ना, स्त्री पुत्र आदि, यदि भी वो आत्मा है लेकिन अपने को तो उनका शरीर ही दिखता है और उसी के प्रति अपन मोह करते हैं। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, अरे यहाँ तक कि देव शास्त्र और गुरु और उनकी वाणी, ये सब उसमें आ जाता है सब, क्योंकि जो हमको दिखता है भगवान, भगवान का तो भगवान का आत्मा तो दिखता है। समो शरण में भी अगर अपन जाएंगे तो समो शरण में भी हमको भगवान का शरीर ही दिखता, अथवा भगवान की वाणी करने को चलो, अथवा कोई वीतरागी भाव लेंगे संत हमारे भाग्य से कदा जी हमें मिल जाए, संभावना तो कम है लेकिन कदाचित मिल जाए कोई, तो भी उनका शरीर ही अपने को दिखेगा, उनकी आत्मा तो अपने को दिखेगी, है ना, उनका शरीर ही अपने को दिखा। हमने कहा ये हमारे गुरु, देखो दो बातें हैं, हमारे गुरु माने उनके प्रति जो एकत्व का अभिप्राय है, जैसे स्त्री पुत्रादिक में, धनादिक में एकत्व का अभिप्राय, इसी तरह ये मेरे देव, ये जो उनमें भी एकत्व का अभिप्राय है, तो वो एकत्व का अभिप्राय है, जिस तरह हम पर द्रव्यों को अपना मानते हैं उसी तरह देव गुरु को भी अपना माने, तो भी हम इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को हमने नहीं जीता, तो क्या हुआ इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से हम जीतेंगे। बस दो चीजें होती है, या तो आप उन्हें जीत लो या वे आपको जीत लें। अनादि काल से क्या हो रहा है, अनादि काल से ये हो रहा है, हम उनके द्वारा जीते गए, हम इंद्रियों के द्वारा जीते गए, मतलब हमने, हमें इंद्रियों ने जीता, हमें भावेंद्रियों ने जीता, हमें इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों ने जीता। क्यों? क्योंकि हमारा उनके प्रति एकत्व पाया जाता है, यानी हम उनके गुलाम हुए, हम उनके, उनको अपना मान करके, चाहे द्रव्य इंद्रियां हो, चाहे भाव इंद्रियां हो और चाहे इंद्रियों के विषय भी पदार्थ हो, उनमें जिस तरह शरीर आदि पर द्रव्यों में एकत्व करते हैं, इसी तरह देव गुरु धर्म में, देव गुरु शास्त्र में भी एकत्व माने ये मैं कौन सा है, वो क्या है भाई, इंद्रिय के विषय में तलाश है ना, ये भान होना चाहिए ना, देव शास्त्र गुरु भी मेरे लिए पर है, मैं इनसे भिन्न परद्रव्य, मैं ये मुझसे भिन्न परद्रव्य है और मैं उनसे भिन्न, इनके लिए वे परद्रव्य और मेरे लिए वे परद्रव्य। देव जो परद्रव्य होने पर भी ऐसा नहीं, जब फिर तो कोई कहेगा ठीक है साहब, फिर तो सच्चे देव भी परद्रव्य और तू देव भी परद्रव्य, सच्चे गुरु भी परद्रव्य, तू गुरु भी परद्रव्य, सत शास्त्र भी परद्रव्य है ना, और तू शास्त्र भी परद्रव्य, तो फिर हम किसी को भी माने ना, एक छल ग्रहण करने की बात नहीं। देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ रूप परद्रव्य जानता है ज्ञानी, लेकिन विकल्प की भूमिका में यदि उसे किसी के प्रति बहुमान का परिणाम आएगा, भक्ति का परिणाम आएगा, आराधना और उपासना का परिणाम आएगा, तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति ही आएगा। जानता है कि यह परद्रव्य है, लेकिन जब तक राग का परिणाम है नहीं, जब तक परद्रव्य के प्रति लक्ष्य जाएगा, समझो परद्रव्य जानने पर भी अभी उपयोग अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित नहीं हुआ, तो यदि उन परद्रव्यों पर लक्ष्य जाएगा, उसका लक्ष्य वीतरागी देव शास्त्र और गुरु के प्रति ही जाए। हे प्रभु आप ही मेरे उपास्य हो, आपका मुझे भव भव में शरण हो, तो भव भव में शरण होगा मतलब क्या, आपने जो भी वीतरागता प्रकट की मुझे उस वीतरागता का भव भव में शरण हो, अर्थात मुझे भी वो वीतरागता प्रकट हो, ये उसके पीछे अभिप्राय है। इसका मतलब ये नहीं वो सम्य दृष्टि धर्मात्मा वीतरागी देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करता है, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति वो भक्ति कब कहलाती है, जब उन्हें भी वो परद्रव्य के रूप में अंगीकार करते, परद्रव्य स्वद्रव्य, क्यों, क्योंकि यदि वो स्वद्रव्य होते तो उनके लक्ष्य से राग नहीं, वीतराग का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि परद्रव्य के लक्ष्य से राग ही होता है, वीतराग का नहीं होती, और स्वद्रव्य के लक्ष्य से वीतराग का ही होती है राग ही। जितना जितना स्वद्रव्य का आश्रय उतना उतना वीतराग करना, और जितना जितना परद्रव्य का आश्रय, परद्रव्य का लक्ष्य, परद्रव्य के प्रति लक्ष्य लिया, उतना उतना राग का करना, और उस लक्ष्य के दो परिणाम प्रशस्त, जो अपने सांसारिक प्रयोजन के कारणभूत पदार्थ है वो अप्रशस्त परद्रव्य कहलाते हैं। अप्रशस्त परद्रव्य वो कोई परद्रव्य अप्रशस्त प्रशस्त नहीं होते, जिनका लक्ष्य करके हमारी भूपरिणति में अप्रशस्त राग हो, तो वो राग हुआ कार्य, और उस राग में कारण हुए कौन, सांसारिक परद्रव्य, स्त्री पुत्र धन मकान रुपया पैसा मान बच्चे, उस कार्य का कारण में उपचार करके उस कारण को भी अप्रशस्त परद्रव्य के। इसी तरह वीतरागी देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करके, वीतरागी देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करके भी क्या होगा, राग हो, प्रशस्त राग हो, भले प्रशस्त भले प्रशस्त राग हो, लेकिन राग होगा, कभी भी परद्रव्य के आश्रय से वीतरागता नहीं हो सकती। तो तीन लोक के नाच समोकरण में विराजमान हो, उनकी दिव्य ध्वनि का प्रपात बह रहा हो, और हम उनके समोकरण में बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे हो, तो भी भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति भी यदि तेरा लक्ष्य जाएगा तो तुझे राग होगा। क्यों राग होगा, क्योंकि मैं तुझसे भिन्न परद्रव्य हूं, और सच में हमारे वीतरागी देव शास्त्र गुरु ने हमें अपनी आत्मा का आश्रय करने के लिए प्रेरित किया, हम उनके पास उनकी वंदना करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमें हमारा वंदनीय शब्द बताया, ठीक है, विकल्प की भूमिका में देव सात गुरु को बंधन का परिणाम आता है, ठीक है, लेकिन सच में बंधन करने योग्य तो तुम्हारे देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान आत्मा है। हम भी अपने देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान आत्मा का बंधन करके आज परमात्म दशा को प्राप्त हुए। यदि तुम्हें भी परमात्मा होना है, यदि तुम्हें भी भगवान होना है, तो देह रूपी देवालय में विराजमान अपनी भगवान आत्मा का अवलंबन करो तो भगवान हो जाओगे। और हमारा ही अवलंबन करते रहोगे तो भगवान दास बने, भगवान दास बने रहना है तो भगवान बनना है। इस बात को इसलिए भी कहता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है, आप सोचो जरा, इस विश्व के जितने दर्शन कहलाते हैं, जितने दर्शन, और उन दर्शनों का कोई न कोई प्रवर्तक तो होता ही, लेकिन हमें गौरव है और हमें गर्व है इस बात का, हमारे भीतराजी देव शास्त्र गुरु के अलावा विश्व के किसी दर्शन के पास ऐसा कोई प्रवर्तक नहीं है जो ये कहता हो कि तुम मेरा आश्रय करोगे तो भी तुम्हें राग होगा, और राग होगा तो तुम्हारी चैतन्य की दुर्गति होगी, क्योंकि पर दबा दो दुख गई है। कोई कहने वाले एकमात्र हमारे मित्र की देव साथ गुरु ने जब जाते क्यों हो, जब ऐसा तुम मानते हो तो जाते क्यों हो भगवान के पास, इसी बात को दृढ़ करने के लिए जाते हो। बुद्धे नहीं बोलते थे, एक उदाहरण देते थे ना, कौन केशु भाई का कोई उदाहरण देते थे, जब उनसे लोगों ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, तुम तो मानते हो कि निमित्त पर द्रव्य का कुछ करता ही नहीं, निमित्त से कार्य होता ही नहीं, निमित्त तो कार्य के प्रति अकिंचित का है, तो फिर तुम बारंबार सौंदर्य रूपी निमित्त के पास क्यों जाते हो, हमने गुरुदेव श्री के पास क्यों जाते, हमने क्या उत्तर दिया, अरे इसी बात को दृढ़ करने के लिए जाते हैं। इसे होता कि नहीं होता, अपनी फोन की बैटरी रिचार्ज, अपने फोन की बैटरी बैठने लगे, क्या बोलते हैं उसको बैठने को, रिचार्ज होने लगे तो क्या कहते हैं अपन, एक आधा घंटा बचे उसमें, उससे पहले उसे चार्ज पर लगा देते। इसी तरह हमारा तत्व ज्ञान का जोश थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगे ना, गुरुदेव के प्रवचनों से उसे रिचार्ज कर लेना चाहिए, 24 घंटे हमारी बैटरी चलेगी, समझाएगी नहीं, और फिर डिस्चार्ज होने लगे जरा सी, फिर थोड़ा सा पर्द्रव्य की वो अपने को महिमा आने लगे, फिर गुरुदेव की प्रवचन रूपी बैटरी प्रवचन का चार्जर लगा लो, और गुरुदेव के हर प्रवचन में ये वज्रवाणी गिरेगी, क्या वज्रवाणी गिरेगी, पर दबा दो तू गई। और जहां पर्द्रव्य की बात करते हैं ना गुरुदेव, बाहर के पर्द्रव्य की तो बात ही नहीं करते, वो तो सीधा बोलते वीतरागी देव सास गुरु भी तेरे को मिले, वो पर्द्रव्य है, उनके प्रति भी तेरा लक्ष्य जाएगा तो तेरी चैतन्य की गति नहीं होगी, अरे तेरी दुर्गति होगी, दुर्गति होगी तो लोग खराब से एकदम दुर्गति कहते दुर्गति माने अहमित्र का भाव मिले तो भी दुर्गति है। आपको विश्वास नहीं हो ना, उन नकुल और सहदेव रूपी पांडवों से पूछ लेना, एक जरा का विकल्प आ गया अपने भाई के प्रति, सागरवी मुनिराज भाई, सागरवी मुनिराज, सागरवी भाई होते मुनिराज, मुनिराज भी सागरवी भाई होते, और उत्सर्ग किया उनके ऊपर, पांचों पर उत्सर्ग समान रूप से किया, उन्हें अपने प्रति जरा भी विकल्प नहीं आया, ओहो सागरवी मुनिराजों पर ऐसा उत्सर्ग, इतने से विकल्प के फल में आज जन्म कारावास हो गया, आज जीवन नहीं कह रहा, आज जीवन कारावास तो 14 साल का होता है, और आजन्म कारावास का मतलब ये होता है कि अंतिम श्वास वही लोगे, डेड बॉडी बाहर निकलेगी, तो स्वर्ग की उत्कृष्टतम आयु 33 साल की है, और कितने से विकल्प के फल में 33 सागर की आयु में चले गए, तो लगता है क्या चले गए क्या, अच्छा
स्वर्ग के सुख होंगे, और 33 सागर तक तो भाई साहब उनकी आत्मा से तो पूछो जरा, जो यहाँ 6वें सातवें की तले टीम में खड़े हुए थे, स्वर्ग में गए 4वां स्थान, संयम की दशा का अंत होकर असंयम की दशा में रहेंगे, यानी 33 सागर और अगला भाव मनुष्य का करेंगे। 8 वर्ष की अवस्था में भी मुनि दशा अंगीकार करें और अंतर्वर्त में केवल ज्ञान करें तो 33 सागर 8 वर्ष अंतर्मुर्त केवल ज्ञान से दूर, इतने से विकल्प की इतनी बड़ी शक्ति। और ये बात हमारे देवसाथ गुरु बताते हैं, अरे ज्ञानी को भी विकल्प की भूमिका में उनका परिणाम, उनके प्रति बहुमान का परिणाम आवे। लेकिन भाई अपन देखते हैं ना, गुरुदेव श्री का जीवन जब अपन देखते हैं इस एंगल से, वो प्रवचन में ये धारा बह रही है, पर दबा दो दुबई स्व दबा दो सुई, ये सब प्रवचन में ये, और बहुत डंके की चोट। दोपहर का प्रवचन चल रहा हो, सुबह का प्रवचन चल रहा हो, पर द्रव्य है, पर द्रव्य के लक्ष्य से लाभ होता है, ये डंके की चोट प्रवचन में ये बात खूब जोरदार तरीके से चल रही हो, और प्रवचन पूरा होते ही भक्ति के कार्यक्रम में गुरुदेव श्री विराजमान रहते थे, बिना एक भी दिन कोई ऐसा रहा होगा जब उन्होंने भक्ति का कार्यक्रम छोड़ा हो, हर दिन वो भक्ति में विराजमान रहते थे। अब भक्ति में जिनेन्द्र परमात्मा के प्रति अर्पणता की कैसी कैसी भक्तियां उड़ाई जाती, ये साधन रहता है। तो देखो परद्रव्य को परद्रव्य जानना, ये सम्यक दर्शन है, क्योंकि जिसने परद्रव्य को परद्रव्य जाना तो स्वद्रव्य को स्वद्रव्य जाने बिना परद्रव्य को परद्रव्य जाना, स्वद्रव्य को स्व को स्व पर को पर जाना, ये तो काम हो गया, समय दर्शन हो गया। अभी पूर्ण वितरकता नहीं हुई, साधक जीवों को भी अरे प्रशस्त राग की बात तो छोड़ो, आप प्रशस्त राग भी उनकी भूमिका के योग्य आता है, आना अलग बात है, उसे कर्तव्य मानना, उसे उपाधेय मानना वो अलग बात है, आना वो चारित्र की कमजोरी है, और उसे कर्तव्य मानना वो क्या है, श्रद्धा का महादोष है। इसके लिए एक उदाहरण आता है, एक दादाजी थे, दादाजी और उनको खांसी बहुत चली, ठीक है, और खांसी चले तो सभी घर के लोग कहेगा दादाजी खांसी का इलाज कर लो, बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो दादाजी बोले तो भैया हम जब घर में जाते हैं ना तो खांसते हुए जाते हैं तो घर की बहू बेटियां होती है ना, तो हम जैसे कि उनको पता पड़ेगा हम आ रहे हैं, खांसते हुए आए तो उनको पता पड़ेगा, तो अदब से बैठ जाए, मर्यादा बनी रहे। तो घर वालों ने कहा मर्यादा के मर्यादा बनी रहने की बात है ना, आप ऐसा करो इस खांसी का इलाज करा लो, और मर्यादा के लिए नकली सांस लिया करिए। तो वो दादाजी बोले जब मेरे पास असली है तो मैं नकली क्यों फंसूंगी। अब बोलो उन दादाजी को 4-6 महीने बाद अर्थी पर लेटा कर शमशान ले जाने की तैयारी घर वाले करेंगे। सीधी सी बात, राग का होना मजबूरी होती है, वितराग का नहीं होगा तो भूल होगा, लेकिन उसको उपाय नहीं मानना अपराध, तुम अपराध से तो बचो, मजबूरी से नहीं बच सकते कोई बात नहीं, अपराध से तो बचो। तो वो यहां पर कहा कि ईश्वर साधित पदार्थों को क्या करना, उसको अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा असंग असंगता
मैंने भगवान आत्मा असंग चैतन्य स्वभावी है, अरे भगवान आत्मा के साथ किसी पर द्रव्य का संग नहीं है। तो पंचासी काय में तो यहाँ तक नहीं, जो ये पर्याय होती है ना उत्पाद वे, उत्पाद वे रूप जो पर्याय है ये भी आत्मा के साथ संयोग भी होता है। वहां तो पर्याय को भी संयोग कहा, उत्पाद माने संयोग, वे माने वियोग। आगे तो कहते ये भगवान आत्मा कैसा है, तो भगवान आत्मा असंग तत्व है जिसने किसी पर द्रव्य का आज तक संग हुआ ही नहीं है ही नहीं, और अनंत काल में जिसको संग कभी होगा ही नहीं। संग की कल्पना तो अज्ञानी ने बहुत की लेकिन संग हुआ नहीं। जो जो भी पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इसके ज्ञान के ध्येय बने जानने में आए, उन उन पदार्थों में इसने अपनापन किया और उन परिद्रव्यों में अपनापन करने से अपने पर कोई दो जगह अपनापन नहीं हो सकता। अपनी आत्मा में भी अपनापन हो और परिद्रव्यों में भी अपनापन हो, ऐसा नहीं हो सकता। असंग भगवान आत्मा को जो संग हो गया है असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, अलग किया का मतलब क्या, सर्वथा अपने से भिन्न जाना। ये जो संग रूप परद्रव्य है जो भावेंद्रिय का विषय बनते हैं, जो आत्मा की परिणति द्रव्य रूप पर्याय से बाहर है, आत्मा के स्वच्छ पुष्कर में जिनका प्रवेश हुआ नहीं, भले ही मैंने उन्हें अपना मानने की कोशिश की लेकिन कोई परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अर्थी समर की गाथा में आया नहीं है, अर्थी समर की गाथा में क्या आया, मैं तो एक शुद्ध सदा अरुचि ज्ञान दर्शन में भरे और कोई परमाणु मात्र भी परद्रव्य, एक अणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं। जब ये बात कहते मुझसे लोग कहते हमने कब अणु को अपना माना, हमने कब अणु को अपना माना था, हमने तो संत को अपना माना। ऐसे आदमी को कौन समझाएगा, कोई तो परमाणु को अपना मानते ही, हम तो स्कंद को अपना मानते हैं। भाई साहब जब परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणु के जत्थे रूप जो स्कंद है तो तुम्हारा कैसे हो सकता। मैंने गाथा आशु की अपने लिया था शुरुआत, सर्वज्ञ ज्ञान जिसे सदा उपयोग लक्षण ही रहे वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा। अरे भगवान परमात्मा ने तो सर्वज्ञ देव ने तो जीव को उपयोग लक्षण से लक्षित देखा, सर्वज्ञ ज्ञान विशेष सदा उपयोग लक्षण जीव है। वो उद्गल कैसे हो सकता है जो तू उद्गल द्रव्य को सब बातें है। उन्होंने कहा कि इस तरह अपने से अलग किया, अलग किया माने अभी तक उनको एक मेक मान रखा था, जब जहां मान रखा था ना वहीं से अलग कर रहा है। पर द्रव्य कभी अपने स्वद्रव्य के रूप तो हुए नहीं, अपने पर द्रव्य अपनी आत्मा रूप कभी हुए नहीं, तो उनको आत्मा से अलग करने की विधि क्या, तो वे आत्मा रूप कभी हुए नहीं इसलिए उन्हें अलग करने का मतलब क्या, उन्हें हमने केवल अपने रूप माना था, मतलब मान्यता में उन्हें अपनापन किया था, उनमें अपने पन का संबंध मान्यता में ही तोड़ा है। पर द्रव्य कभी भी स्वद्रव्य में प्रविष्ट नहीं हुए इसलिए उन्हें स्वद्रव्य में से हमको निकाल करके बाहर करना है, ये बात नहीं करना क्या है, मान्यता में अपना माना था, मान्यता में उनके प्रति एकत्व का अभिप्राय किया था, मान्यता में ही उनको अलग। सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। इस प्रकार जो मुनि द्रव्य इंद्रियों, भावेन्द्रियों, तथा इंद्रियों के विषय भूत पदार्थों को मुनिवन, देखो इवन इसने अपनी बात की थी, चौथे गुण स्थान, पांचवे गुण स्थान और छठे गुण स्थान में ये जो 31 नंबर की गाथा में जिस स्तुति का वर्णन किया गया है, यह है तो जगन की स्तुति। जगन की स्तुति होने पर भी ये ऐसी स्तुति है, ये जगन की स्तुति जब तक प्रकट नहीं हो तब तक मध्यम और उत्कृष्ट की स्तुति प्रकट नहीं हो। क्या मतलब इसका? जिसको 33% पासिंग मार्क्स की लाने की योग्यता नहीं हो वो मेरिट में आएगा एक सूची में, तो नंबर इसका इसका स्तुति के वर्णन में नंबर पहला है और स्तुति है जगन्य। लेकिन जगन्य होने पर भी जब तक ये स्तुति मतलब जिसको अभी परद्रव्य एक रूप परद्रव्य जिससे अपने भाषित होते हैं, अब उससे हम कहें राग तेरा स्वरूप नहीं है, तो ये क्रम भंग उपदेश होगा। राग मेरा नहीं है, भावक का भाव्य रूप जो राजा जी परिणाम है वे मेरे नहीं है, ये मान्यता होने के पहले शरीरादि परद्रव्य मेरे ही है, शरीर आदि से अत्यंत भिन्न पर पदार्थ मेरे नहीं है, ये तो इसको ख्याल में आवे मेरे। आगे वो यहाँ पे कह रहे हैं जिससे कुछ पदार्थों की मतलब तीनों को जीत कर ये जायक शंकर नाम का दोष आता था, तो सब दूर होने से ये जाए शंकर दोष का मतलब क्या? शंकर दोष का मतलब क्या होता है? शंकर दोष माने किसी की किसी में मिलावट करना, ये जायक शंकर दोष माने ये जायक को पृथक पृथक न देखकर एक में जो व्यय रूप परद्रव्य है और जो जानने वाला गायक परमात्मा है उन दोनों की एकता का अभिप्राय, उसका नाम है व्यय गायक शंकर दोष। उसको दूर करने का मतलब क्या? कि ज्ञान को ज्ञान जाना और व्यय को व्यय जाना, वो कहते होने से एकत्व में संकोच किरण ऐसा भगवान आत्मा एकत्व में संकोच किरण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न अपने एकत्व से संकोच किरण और अन्य सर्व द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न। अपनी चर्चा हुई थी जो शुरू के दिन, तो एक बात कही थी देखो तो पूरा समय सार केवल एक शब्द पर बना है और वो शब्द है एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, क्योंकि आचार्य देव ने ये प्रतिज्ञा की थी पांचवें नंबर की गाथा में। क्या प्रतिज्ञा की थी? मैं अपने संपूर्ण निज वैभव से उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा को दर्शाऊंगा। क्यों दर्शाऊंगा? उसके पहले चौथे नंबर की गाथा में उन्होंने कहा जगत के सर्व जीवों को काम भोग बंधन की कथा यद्यपि विसंवादिनी कथा है, संसार में भटकाने वाली कथा है, तो भी अनंत बार सुनने में परिचय में और अनुभव में आ गई। भिन्न आत्मा का एकत्व कभी सुना नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव में नहीं आया, और जिन्हें अनुभव में आया ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों की सेवा संगति नहीं, सब टीका मिला। जब ये हुआ ना तो जो बात अनादि काल से सुन ली उस बात को क्या सुना? जो बात आज तक नहीं सुनी और जिसको नहीं जानने की वजह से संसार परिभ्रमण चालू है, ऐसे हम उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात वो यहाँ पे कहा ना, इसलिए यहाँ पर भी वही शब्द का प्रयोग किया। देखो क्या कहा? अपने एकत्व में संकोच किरण, एकत्व से कभी दो रूप भगवान आत्मा हुआ संकोच किरण, और क्या कहा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा, असाधारण लक्षण क्या भगवान आत्मा का? ज्ञान स्वभाव, उसके द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न सर्वथा भिन्न। आगे ना ऐसे
आत्मा ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करता है, अपने आत्मा का अनुभव करता है। क्यों? अपनी आत्मा से भिन्न अन्य आत्मा वो तो पंचर में नहीं गए, वो तो विभक्त नहीं गए, अपनी आत्मा का अनुभव करता है वह निश्चय से जितेंद्रिय जीव है। अगर जगत ये चुकी है और चौथे दृष्टान से छठवे दृष्टान तक समझाते हो, चौथे दृष्टान वाले चंद्रषि, पांचवे दृष्टान वाले श्रावक और छठे दृष्टान वाले मुनिराज की ये स्तुति, मुनिराज के परिणति में ये परिणतने वाली स्तुति, ये जगत स्तुति कहलाती है। तो ये जो है ना कौन, ये जो चौथे अनुष्ठान वाला, पांचवे अनुष्ठान वाला और छठे अनुष्ठान वाला जीव, इन तीनों जीव संज्ञा को प्राप्त। आप कहोगे जीव तो भगवान को कहते, ऐसा भगवान के लिए जीव शब्द रूढ़ हो गया है। अपन लोगों की बहुत संक्षिप्त में बोलने की आदत होती, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं अक्सर अपन, है ना। तो वास्तव में जो भगवान जिनेंद्र का पूरा नाम है वो है जिनवर वृषभ। तो हमने वृषभ भी गायब कर दिया, वर भी गायब कर दिया और जिन ब्रज द्रव्य संग्रह में ये बात आई है, वहां पे गाथा आई है, जीवम जीवम दफम जिनवर वृषभम जिनवर, जिनवर शब्द में से उन्होंने तीन अर्थ निकाली, जिन जिनवर और जिनवर वृषभ, चौथे हिंदुस्तान से लगा करके छठे हिंदुस्तान तक जिन कहलाते हैं सामान्य मुद्रा। और उनमें जो गंधर्व देव होते हैं विशिष्ट प्रज्ञा के धनी, उनको बोलते हैं जिनवर, और तीर्थंकर परमात्मा को बोलते हैं जिनवर वृषभ। कोमट सार में तो और गजब की बात थी, उन्होंने कहा दूसरे हिंदुस्तान से लेकर जिन संज्ञा है। तो आप कहोगे कैसे, देखो दूसरा हिंदुस्तान पहले से दूसरी कक्षा में नहीं आते, पहले से चौथे में आया और चौथे से मान लो गिर गया, जब तक मिथ्या तो नहीं आएगा, मिथ्या तो आएगा पहले हिंदुस्तान में, तो चौथे से गिरा अभी तीसरे में आया, दूसरे में आया, उन्होंने कहा दूसरे हिंदुस्तान तक जीव संज्ञा लागू, क्षमता है ना, ये जीव संज्ञा लागू। ये समझना इस तरह बहुत अर्थ किए हैं, तो जितेंद्रिय जीव है और ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक अर्थात अधिक नहीं है। ऐसा है जैसे ऐसा है वह ज्ञान स्वभाव, पढ़ लेते हैं कर लेंगे, ऐसा है वह ज्ञान स्वभाव इस विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ अर्थात उन्हें जानता हुआ भी उन रूप न होता हुआ। तिरने का मतलब क्या है, पानी के ऊपर तैरता है, इसका मतलब क्या, पानी के ऊपर तैरता हुआ भी पानी में डूबता नहीं, डूबता नहीं उसको तो तैरना कहते। इसी प्रकार पर द्रव्य को जानता हुआ भी उन रूप नहीं होता, इसका नाम है तैरना। प्रत्यक्ष उद्योग पने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और अनाथ सत ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। देखो भगवान शब्द आत्मा के लिए कितनी जगह लिखा, बेहतर कथा का त्याग करते थे तीन बार भगवान भगवान का ऐसा यहां भी कहा ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है, ऐसा अपने को निर्णय करे। ये हुई इस प्रकार एक निश्चय स्तुति को यह हुई, ये एक प्रकार की निश्चय स्तुति हुई। शेष चर्चा अभी अपनी जो दो प्रकार की भाव्य भावक वाली निश्चय स्तुति है उनकी चर्चा अपन लोग अगली स्वाध्याय में करें।
Yeah.